ओम शांति।
तो अभी हम दीदी के द्वारा सुनते हैं एकांत, एकाग्र और एक रस स्थिति। इन सभी सेवाओं को करते हुए वे भी आप ऐसी स्थिति कैसे बनाए रखते हैं, हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के इस पावन भूमि पर आकर के तपस्या करने की एक लॉटरी मिली हिसार वालों को, क्योंकि कई ग्रुप मिले थे लेकिन अभी सब ग्रुप कैंसल हो गए हैं। तो बाबा भी कहता है जिसका बुद्धि योग क्लियर होता है वो पहुंच जाते हैं, और साथ ही वो अपनी झोली भी भर लेते हैं। तो आप सभी महान भाग्यशाली हो जो बाबा के बेहद के घर में आकर के तपस्या करने का सुअवसर मिला। बहुत सुंदर आपने ये 3 दिन में अनुभव किया ही होगा और अपनी झोली भरपूर की होगी। साथ ही साथ आज का जो विषय है एकांत, एकाग्रता और एक रस स्थिति, योग के अंदर मन की एकाग्रता जितनी हमारी अच्छी होती है तपस्या इतनी अच्छी होती है। तो इसीलिए एकाग्रता हर कोई चाहते हैं, और संगम युग में बाबा का ये वरदान है हम बच्चों को जो मन की एकाग्रता को सहज विकसित कर सकते हैं। दुनिया में लोगों का मन फिर भी कितनी बातों में भटकता है, कितनी जगह पर जाता है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है एकाग्र करना, लेकिन हम बच्चे कर सकते हैं क्योंकि हमें जो ज्ञान मिला है आत्मा का ज्ञान, तो हमारी बुद्धि बाहर जो भटकती है उसको हम सहज समेट सकते हैं। जब तक दैहिक भाव में रहते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, और इसीलिए ये जो हमें थोड़ा समय भी एकाग्रता में अपने मन को ले आने का अवसर मिलता है, ये आंतरिक कमाई हमारी बहुत करा देता है, क्योंकि आत्मा की कमाई ही है इसी शक्ति के माध्यम से। एकाग्रता न होने के कारण आज दुनिया में देखो मनुष्य की स्थिति कैसी है, इतनी हलचल है, इतने व्यर्थ चिंतन में परेशान है। तो हलचल का अनुभव करते, परेशानियों का अनुभव करते हैं, कारण क्या? मन एकाग्र नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी ये शब्द सुनते हैं एकाग्रता, एकांत, तो एक चित्र मन के अंदर आता है। कौन सा चित्र आता है? कोई योगी का चित्र आता है कि योगी कैसे दूर एकांत में बैठा है और उसकी बाह्य स्थिति ऐसी है जैसे स्पष्ट होता है कि एकाग्रता में बैठा हुआ है। तो बाबा कहते तुम बच्चों का भी यही स्वरूप होना चाहिए। खैर, उसके लिए हमें कोई दुनिया को छोड़ करके दूर नहीं जाना है, ऐसे योगी नहीं बनना है, रहना यही है। लेकिन बाहर कितनी भी हलचल हो, लेकिन हमारा मन शांत और अचल हो सके, ऐसी एकाग्रता की स्थिति हमें डेवलप करनी है। लेकिन ये मनुष्य का मन जो भटकता है, शांत नहीं होता है, किन किन बातों में भटकता है? कभी सोचा कि मन जाता है तो किन बातों में जाता है? हमेशा देखा गया कि मनुष्य का मन तीन बातों में भटकता है। पहला मन जो भटकता है, व्यर्थ की बातों में भटकता है। व्यर्थ संकल्प कहो, नेगेटिव संकल्प कहो, उसमें मन भटकता है। दूसरा मन जो भटकता है, संबंधों में भटकता है। कोई न कोई संबंधों में मन चला जाता है। और तीसरा जो मन भटकता है, वो है इच्छाओं में भटकता है। हमेशा देखा गया कि मनुष्य का मन अगर एकाग्र नहीं होता है तो ये तीन बातों में ही वो विचरण कर रहा होता है। अब बाबा ने हमें सहज युक्ति दी है उसको एकाग्र करने की। कैसे हमें युक्ति दी है, कौन सी युक्ति दी है? तो बाबा ने हमें मुरली द्वारा समर्थ संकल्पों का स्टॉक दिया है। तो हमें मन को मारना नहीं है, मोड़ देना है, दिशा दे देनी है। और दिशा देने के लिए समर्थ संकल्प में हम अपने चिंतन को ले चले, तो नेचुरल है कि व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है। दुनिया में मनुष्य का मन बहुत व्यर्थ में, नेगेटिव में जाता है, क्योंकि उनके पास अच्छी बातें सोचने का कोई स्टॉक नहीं है। हमें रोज मुरलियां सुना करके बाबा ने इतना ज्ञान का स्टॉक से भरपूर किया है, समर्थ संकल्पों से भरपूर किया है, कि अब हमारा मन को चेंज करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, बाबा ने हमें जो ये सुंदर युक्ति बताई है कि बच्चे, एक तो स्टॉक है समर्थ संकल्पों का, दूसरा स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना आता है। बिंदी लगा करके, बिंदी बन करके, बिंदी बाप को याद करना। तो जो इतना अंदर में हलचल चल रही होती है, उसको शांत करने की विधि जो बाबा ने बताई, या तो फुल स्टॉप लगाओ और या तो स्टॉक अपने पास इतना जमा हो जिसमें रमण कर सके। तो बिंदी लगाना कि छोड़ो सब बातों को। कैसे बिंदी लगाना? कोई चीज तो नहीं उठा करके बिंदी यहां लगा दिया और हमारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन बिंदी लगाना माना अपने मन को एक श्रेष्ठ दिशा दे देना। कैसे दिशा देंगे? जो हुआ कल्याणकारी, इसमें जरूर कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य का व्यर्थ इसीलिए चलता है दुनिया के अंदर, एकाग्रता इसीलिए नहीं है कि कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है, हाय क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, और उससे व्यर्थ संकल्पों की रचना बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन जब बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान दे दिया, ये समझ दे दी कि बच्चे जो हुआ उसमें कल्याण, बुरा कुछ होता ही नहीं, हर बात में कोई ना कोई कल्याण है। मान लो हमने किसी बात के लिए अच्छा पुरुषार्थ भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब विपरीत कुछ होता है तो व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय उसमें क्या कल्याण है उसको समझने का प्रयास करो। तो कल्याण देखेंगे तो मन शांत हो जाएगा। हाय ये तो बहुत बुरा हो गया, अकल्याण देखा तो व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए व्यर्थ और नेगेटिव से मन को दिशा देने के लिए सबसे पहली बात फुल स्टॉप लगाने के लिए कल्याण को देखो। नहीं दिखाई देता है तो ढूंढो, कुछ न कुछ तो कल्याण है। बाबा ने कहा है तुम कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, समय कल्याणकारी है, तो तुम्हारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है। हो सकता है कि हमें पता ही ना हो हम गलत दिशा में जा रहे थे अपने लिमिटेड समझ के आधार पर, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हुआ और दूसरा हुआ, तो बाबा कल्याणकारी है, वो जानता है बच्चों का कल्याण किस में है, तो वही हमारे लिए उत्तम है। अच्छा और कुछ कल्याण न भी दिखाई देता हो तो भी कम से कम उस घटना से कोई सीख मिली, ये तो कल्याण है। कोई अनुभव प्राप्त हुआ, ये तो कल्याण है। तो ये कल्याण देखने से हमेशा व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाए, और फिर ज्ञान की बातों में उसको रमण करना, जो स्टॉक भरा है उसके तरफ ले जाना। तो बुद्धि या मन को एकाग्र करने के लिए हमारे पास समर्थ संकल्पों का स्टॉक चाहिए। दूसरी बात जो कहा संबंधों में भटकता है, तो उसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताई कि बच्चे सर्व संबंधों का रस एक बाबा से ले लो। जब हमारे सर्व संबंध बाबा से होगा तो मन जो दैहिक संबंधों के पीछे भाग रहा है और वो संबंधों से कहीं न कहीं कोई न कोई दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मन परेशान होता है, लेकिन बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस प्राप्त करते हैं तो वो सुख का रस मिलने लगता है। तो जब सर्व संबंधों के सुख का रस अंदर में लेने लगते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई न कोई संबंध आप बाबा से जोड़ लो। जो संबंधों का अभाव जीवन में महसूस कर रहे होते हैं वो संबंध बाबा के साथ जोड़ लो और उसमें सुख का रस लेना शुरू करो, तो मन दैहिक संबंधों से बहुत सुंदर तरीके से किनारा हो, वो खींचेगा नहीं, क्योंकि वो संबंधों का रस खींच रहा होता है। जब बाबा से लेना चालू करो तो दैहिक दुनिया के तरफ तो नहीं जाएगा। और तीसरी बात जो कहा इच्छाओं में भटकता है मन, ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तो चाहिए चाहिए की चाहना जितनी अंदर में बढ़ती जाती है, तो वो चाहिए चाहिए कि चाहना के आधार से अगर देखा जाए तो मन बहुत विचलित हो जाता है। जो चाहिए और अगर वो नहीं मिल रहा है तो कितना विचलित होता है मन, योग लगने नहीं देता है। उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, इच्छा मात्र अविद्या, इच्छाओं में भटक रहा है ना, संगम युग पर कहो कि ये इच्छाएं भी जो है कांटे के समान है, जो कहीं न कहीं हमें कोई न कोई प्रकार की तकलीफ देंगी। इसीलिए बेहतर है कि हम अपने मन को इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में ले आए और भरपूरता का अंदर से अनुभव करना शुरू करें। जितनी भरपूरता अंदर में महसूसता होंगी कि हमें बाबा ने सर्व बातों में भरपूर किया है, तो भरपूरता है तो संतुष्टि है। जहां भरपूरता नहीं, कमी महसूस होती है, असंतुष्टि है, तो अप्रसन्नता है, प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। तो ये तीन जो द्वार है मन के भटकने के, उसको बाबा ने पहले से ही हमें समझ दे करके बंद किया हुआ है। और फिर मन को जब एकाग्र करना है तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तीन चीजें चाहिए, तीन चीजों के द्वार बंद करो। और तीन चीजें चाहिए, कौन सी तीन चीजें चाहिए? तो सबसे पहला है लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, दूसरा लक्षण चाहिए उसके हिसाब से, और तीसरा लक्ष्मण रेखा चाहिए। तो जब मन को एकाग्र करना है तो लक्ष्य स्पष्ट हो कि आज मुझे अपने मन को किस स्थिति में एकाग्र करना है। क्या आज मुझे फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना है, आज मुझे निराकारी स्थिति का अनुभव करना है? ये लक्ष्य बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि नहीं तो मन को अगर लक्ष्य नहीं दिया तो एकाग्र किसमें करना है। तो एकाग्र करने के लिए लक्ष्य सुबह ही दे दे अपने मन को कि आज मुझे सारा दिन फरिश्ता स्थिति में रहना है, फरिश्ता की चाल चलनी है, फरिश्ते का स्वरूप अपना अनुभव करना है, या निराकारी स्थिति का अनुभव करना है, या बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है, या लाइट हाउस माइट हाउस बन करके हमें बैठ किस स्थिति का अनुभव करना है। तो वो लक्ष्य मन को दे देना जरूरी है, क्योंकि मन को जब तक स्पष्टीकरण नहीं होता है तो मन कभी तो थोड़ी देर के लिए अव्यक्त स्थिति में जाएगा, थोड़ी देर के लिए निराकार स्थिति में, थोड़ी देर तो भी एक भटकन का अनुभव कर रहे हैं। एकांत, उस एक के अंत में जाने के लिए उस स्थिति के माध्यम से हमें जाना है, तो ये लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा लक्षण कि उसके हिसाब से फिर मुझे बुद्धि को स्थित प्रज्ञ बनाना है। गीता में बहुत अच्छा ये शब्द आता है, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मन बुद्धि, स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता तभी आती है। अगर बुद्धि में कंफ्यूजन है तो हमेशा एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकते, तो कंफ्यूजन ना हो। लक्ष्य स्पष्ट हो गया, वो चित्र हमारे सामने स्पष्ट है, वह आज फरिश्ता स्वरूप है। तो एक फरिश्ता स्वरूप हमारा, वो इमेज, और उसके हिसाब से जो लक्षण कि भाई फरिश्ता चलता है तो कैसे चलता है, बोलता है तो कैसे बोलता है। तो ये लक्षण मुझे आज सारा दिन इमर्ज करना है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस स्थिति के विषय में, कोई कंफ्यूजन बुद्धि को नहीं होना चाहिए। बुद्धि उस स्थिति के लिए निश्चयात्मक हो, इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चयात्मक बुद्धि हो उस बात के लिए जो लक्ष्य हमने रखा, फिर उसके ऊपर दृढ़ रहना जरूरी है और दृढ़ता संपन्न अभ्यास करना जरूरी है। जब निश्चय बुद्धि हो करके दृढ़ता के साथ अभ्यास करेंगे तो सहज उस लक्षण में सारा दिन रहने से दिन के अंत में महसूस करेंगे कि वाह, आज सारा दिन इतनी अच्छी स्थिति रही। उसी में ही हम एकाग्र रहे, एकांतवास में जैसे रहे और एक रस स्थिति का तभी हम अनुभव करेंगे। नहीं तो 5 मिनट फरिश्ता स्वरूप, 5 मिनट निराकारी स्वरूप, 5 मिनट लाइट हाउस में, तो एक रस नहीं है हम। तो इसीलिए बुद्धि का भटकाव नहीं चाहिए। बुद्धि हमारी एकदम निश्चयात्मक, दृढ़ और उसी दिशा में है। जो लक्ष्य रखा है उसी हिसाब से अपने लक्षण को इमर्ज करते जाओ। लक्षण माना उसी संस्कार को हमें इमर्ज करें, वही स्वभाव को हमें इमर्ज करना है और इमर्ज करते हुए उसमें स्थिर रहे और फिर लक्ष्मण रेखा, जिस तरह सीता जी के लिए कहा जाता था कि लक्ष्मण रेखा उसके लिए लगाई, इससे बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलेंगे तो माया रावण तो उठाने के लिए बैठी है। तो हमें भी अपने आप को एक व्रत में बांधना है। भक्ति मार्ग में भी कोई विशेष दिन होता है तो लोग हमेशा व्रत रखते हैं, परहेज रखते हैं, आज ये नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि व्रत रखने से अंदर मनोबल बढ़ता है। तो हमें सूक्ष्म व्रत रखना जरूरी है कि आज मेरे मन और बुद्धि इसी दिशा में जाना चाहिए। हर प्रकार के व्यर्थ से परहेज व्रत रख दिया है। तो इस तरह से एक लक्ष्मण रेखा के अंदर मन को रख दिया तो मन और कहीं जाने की मार्जिन नहीं रखेगा। वो लक्ष्मण रेखा हमने खींच दिया मन के लिए, ये तुम्हारी लिमिट है, इससे बाहर नहीं जाना। और उस रीति से जब हम मन को चलाना शुरू करते हैं तो मन बड़ा सुंदर शांत रहता है। फिर उत्पात नहीं मचाता है। अगर उसको लक्ष्मण रेखा में नहीं बांधा तो उत्पात तो जरूर मचाएगा, है ना। तो कोई ना कोई व्रत विशेष देना चाहिए कि आज हम वही मुख का मौन रखेंगे, व्यर्थ की बातों में नहीं जाएंगे। कोई अगर आता भी है बात करने के लिए तो को आज मेरा मौन है ना। तो ये लक्ष्मण रेखा में बांधना होगा। जैसे भट्टी के अंदर आते हैं तो भट्टी में कैसे आप अटेंशन रखते हैं ना, कि हाँ कोई आपस में भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, जितना हो सके अपने मन को बस बाबा में मगन रखना है। तो इसी तरह जब प्रैक्टिकल क्षेत्र पर है आप, वहां पर भी बीच बीच में अपने मन को कोई ना कोई व्रत देना जरूरी है। यानी दृढ़ संकल्प में बांधना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है, विशेष अटेंशन रखते हुए। इसलिए बाबा कहते हैं अगर लक्ष्मण रेखा नहीं होंगी ना तो आलस्य अलबेलापन सहज आ जाता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा में अगर बांधा है तो अटेंशन के पहरेदार हमारे बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ध्यान रहता है नहीं आज इस बात का व्रत है, जैसे भक्ति मार्ग में कोई व्रत रखते हैं भैया सारा दिन नमक नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो अटेंशन रहता है ना। कोई अगर देना भी चाहता है तो पूछते हैं भाई नमक तो नहीं है इसमें, आज मेरा उपवास है, कहते हैं ना, नहीं लेते हैं, स्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को। ठीक इसी तरह हमें भी ये लक्ष्मण रेखा में अपने आप को स्ट्रिक्ट करना कि कोई अगर फालतू बात करने के लिए आए तो कहो भाई आज मेरा व्रत है कि मैं फालतू बातों का सेवन आज नहीं कर रही, व्यर्थ की बातों का सेवन मुझे नहीं करना है। जैसे कई लोग भाई आज सारा दिन सोमवार है, सोमवार का मुझे मौन रखना है, तो मौन रखते हैं तो कोई भी व्यर्थ की बातों में नहीं जाते हैं ना, स्पष्ट। ठीक इसी तरह हमें भी अपने आप को उस लक्ष्मण रेखा में बांधना बहुत जरूरी है। तो तीन चीजों की परहेज ताकि मन अंदर रहे, न व्यर्थ न संबंध न इच्छाएं खींच सके, और तीन चीजें जो करनी है लक्ष्य लक्षण और लक्ष्मण रेखा, एकाग्रता के लिए ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद जैसे कहा एकांत, एक के अंत में मन को ले जाना है, एक बाबा की याद में वो समाया रहे, क्योंकि ये तपस्या हो जाती है, तो उसके लिए भी तीन चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले एकांत में तभी हमारा मन जा सकता है जब सभी प्रकार के आकर्षणों से हम अपने मन को डिटैच करते हैं, यानी जिसको कहा जाए कि वृत्ति वायुमंडल वाइब्रेशन की आकर्षण से भी मन को सेफ रखना है। जितना हम ये अटेंशन रखते हुए सेफ रखेंगे मन को, उतना एकांत में जाना उसके लिए सहज हो जाएगा। दूसरी बात के डिटैचमेंट, न्यारा और प्यारा जैसे बाबा कहते हैं, तो न्यारा और प्यारा होने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सभी ने ये बात सुनी है कि बाबा इतना न्यारा प्यारा, बाबा कभी भी बच्चों के बीच से कहीं एकांत के लिए अभ्यास करने नहीं गए, रहे सबके बीच में, लेकिन बाबा ने अपनी बुद्धि को इतना न्यारा और प्यारा किया हुआ था, जो बच्चे अगर आते भी थे बाबा के पास समाचार सुनाने तो दादी क्या कहते, बाबा जैसे एसेंस को कैच कर लेता था और फिर डिटैच उपराम हो जाता था, उपराम हो जाना। कई बार बच्चों को लगता था कि पता नहीं बाबा सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तो बाबा को पूछते थे बाबा आपने सुना हमने जो बात कही, तो बाबा सार सुना देते थे कि हाँ बच्चे ये बात आप कह रहे थे, बाकी विस्तार को जो एक्स्ट्रा बातें होती थी उससे न्यारा डिटैच। तो उपरांत डिटैच, कोई भी बात का एसेंस सुन लो समझ लो और डिटैच। हमें दुनिया से ये भी नहीं कहना कि तेरी बात हमें सुनना नहीं है, किसी का इंसल्ट भी नहीं करना, रहना भी यही है, लेकिन कमल की तरह न्यारा और प्यारा, कोई छींटा उसके ऊपर रह न सके। और तीसरा, एकांत में जाने के लिए अंतर्मुखता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो एक तो आकर्षण के वाइब्रेशन से परे, दूसरा डिटैचमेंट, एसेंस को कैच कर लिया, बाकी विस्तार में अपनी बुद्धि को न ले जाओ, और तीसरा फिर अंतर्मुखता का अभ्यास बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता का मतलब क्या है? अंतर्मुखता माना अपनी कर्मेंद्रिय को समेट लेना। दादी गुलजार बहुत अच्छी ये बात कहती है कि अंतर्मुखी बनने के लिए अंतर्मुख क्यों कहा जाता है। अंतर्मुख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मुख पर ही मुख्य इंद्रियां हैं, आंखें भी है, कान भी है, मुख भी है, जो मुख्य इंद्रियां जो बाह्यता में ले जाने वाली है वो सारी मुख के ऊपर है, और सोचने की शक्ति भी है। तो देखना, सुनना, बोलना और सोचना चारों ही इंद्रियां मुख पर है, उसको अंतर ले जाना, अंदर ले जाना, अंतर मुख माना उसको अंदर कर देना जरूरी है, बाह्यता के आकर्षण से उसको समेट लो। तो सर्व कर्मेंद्रिय को अंदर ले जाना, दूसरा अंतर्मुख अर्थात मन को शांत करना, स्वीट साइलेंस में ले जाना है। और तीसरा, अंतर्मुखी बनना माना जैसे कोई योगी का चित्र कहा, जैसे पहाड़ों पर बैठा हो, लेकिन उसके लिए जो बाबा ने अभ्यास हम बच्चों को बताया कि अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। हमेशा योगी को चार जगह दिखाया जाता है, कौन सी चार जगह? एक तो गुफा में होता है, एक तो पहाड़ों पर होता है, एक तो अंडरग्राउंड होता है, कभी कभी खड्डा खोद करके भी कई लोग नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। ये सब हमारे यादगार है, संगम युग के हमारे अभ्यास के, उन्होंने स्थूल में ले लिया। तो जब कहा गुफा में चले जाओ, तो गुफा में जाना अर्थात ब्रुकुटी की गुफा है, उस गुफा में आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ या आत्म अभिमानी होकर के बैठो। उस गुफा में हमें अपने आप को ले जाना है एकांत में जाने के लिए। तो ब्रुकुटी की गुफा में मैं आत्मा, आत्म अभिमानी होकर के आत्म स्थिति में स्थित। आत्माभिमानी होना माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनना, सातों गुणों को इमर्ज करना, और एक एक गुणों का स्वरूप बनते हुए उसके अनुभव के अंत में जाना है। क्योंकि जो आत्माभिमानी होगा उसी का मन परमात्मा में सहज लग सकता है। बिना आत्माभिमानी, बाबा हर रोज साकार मुरली में यही कहते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। जब तक आत्माभिमानी नहीं होते हैं तो एक के अंत में समाना मुश्किल है। इसीलिए आत्माभिमानी होना माना मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, यह रटना नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी होकर बैठना माना आत्मा के सातों गुणों के स्वरूप को इमर्ज करना, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, उसके प्रवाह में अपने मन को ले जाना और उसका स्वरूप बन जाना, उसके स्वरूप हो जाना। ये अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ और जितना उसके अभ्यास में आप रहेंगे तो बाहर कितनी भी हलचल होगी उस गुफा में आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, जब अंतर्मुखी कहते हैं तो बाबा हमेशा कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाओ। जिस तरह कोई भी साइंटिस्ट होता है, उसको जब किसी चीज का रिसर्च करना होता है, अगर वो बाहर लोगों से मिलता रहा, बातें करता रहा, तो उसका मन न एकाग्र होगा, न उस रिसर्च में वो रिसर्च कर पाएगा। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं, तुम बच्चे भी अंडरग्राउंड हो जाओ, अर्थात कि हम भी कोई रिसर्च में अपने मन को स्थित करते हैं। जिस तरह कोई साइंटिस्ट को रिसर्च करना है तो उस समय बाहर के लोगों से वो कट ऑफ होता है, तभी वो अपने मन को फोकस कर सकता है। तो इसीलिए बाबा ने ये भट्टियां भी ऑर्गेनाइज की ताकि उस समय आप अंडरग्राउंड हो सको। तो जब ऐसे अंडरग्राउंड हो जाओ और फोकस करो अपने मन को, एक के अंत में ले जाओ। रिसर्च करना है हमें अपने मन की शक्तियों के ऊपर, अपनी बौद्धिक शक्तियों के ऊपर, है ना। दुनिया में जब रहेंगे तो भावनाओं के प्रवाह में बह जाएंगे। किसी ने कोई बात कही, उस भावना में बह गए, कभी कोई बात करता है तो उस भावना में बह जाते हैं। तो भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, लेकिन एकांत में जाने के लिए, भावनाओं के प्रवाह में हम बहे नहीं, उसके लिए अंडरग्राउंड जाना बहुत जरूरी है। ये देह की धरनी से अलग हो जाओ, न्यारा हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, अर्थात स्वीट साइलेंस में चले जाओ। डेड साइलेंस नहीं, बाबा कहते स्वीट साइलेंस में चले जाओ। तीसरा, जैसे कहा कि कोई भी योगी जब एकांत में बैठा है तो पहाड़ों पर, बहुत ऊंचाई पर बैठा है, तो बाबा भी कहे तुम ऊंचे स्वमान में स्थित करो अपने मन को। इतना ऊंचा स्वमान लो और उस स्वमान में स्थित हो जाओ और उस अनुभव के अंदर जाओ। जब स्वमान में स्थित हो जाएंगे तो जैसे सारी दुनिया नीचे हो गई और हम ऊंचे एक आसन पर, स्वमान के आसन पर स्थित है, उस रूप में अपने आप को देखो। तो बहुत सुंदर ऐसा लगेगा कि बहुत समीप है ना, परमधाम के जैसे समीप है। ऊंचे आसन पर बैठ जाओ तो निराकार स्थिति में जाना भी आसान हो जाएगा, बाबा के साथ का अनुभव करना भी आसान हो जाएगा, और एक रस स्थिति बनाने में भी बहुत मदद रूप होता है। और तीसरा है, चौथा है कि बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होना माना सागर के तले में चले जाना। अर्थात जैसे दुनिया में तैरक होते हैं, एक होता है स्विमिंग पूल में या कुएं में तैरने वाला, एक होता है नदी में तैरने वाला, एक होता है समुद्र में तैरने वाला। लेकिन समुद्र में तैरने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, एक लहरों के साथ टकराने वाले, लेकिन दूसरे होते गोताखोर, जो एक नाव में जाते हैं दूर समुद्र के अंदर और फिर डाइव मारते हैं, और जब डाइव मारते हैं तो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, और वो दुनिया के अंदर जैसे प्रवेश करते तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ, न्यारे हो गए, और उस दुनिया को खोजने में समझने में नीचे गहराई में जाते हैं, एकदम खूब डीप डाउन जैसे जाते हैं, और उस दुनिया की विविधता को महसूस करते हैं। रंग बिरंगी नीचे की दुनिया भी इतनी सुंदर है, एक अलग दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया, और जैसे ही उस दुनिया में प्रवेश किया समय का एहसास नहीं रहता है, कितना समय बीत गया मालूम नहीं। जब ऊपर वाले सिग्नल करते हैं, भैया अभी ऊपर आओ, जाना है वापस, बाहर की दुनिया में कितना भी तूफान हो हलचल हो, लेकिन नीचे एकदम शांत, और इतना सुंदर अनुभव सहजता से जैसे तैर रहा है, और इतना उसको अच्छा लगता है कि उसको समय का एहसास नहीं। ऊपर वालों ने सिग्नल किया तब महसूस हुआ, अच्छा इतना घंटे हो गए, चलो भाई ऊपर चलो, तब ऊपर आते हैं। तो अंतर्मुखता की स्थिति ऐसी ही है, एक गोतेखोर की तरह। ऐसा हम गोता लगाना चालू करें, बाबा कहे कभी सूक्ष्म वतन में, शुरू शुरू में की मुरलियों में भी बाबा ने कई बार ये बात कही है कि बच्चे नीचे की दुनिया में तो बहुत सारी लिमिटेशन है, समय का भी लिमिटेशन है, स्थान का भी लिमिटेशन है, बाप दादा से मिलन मनाने में बहुत सारी लिमिटेशन है, बाधाएं हैं, हदे हैं, लेकिन आप बच्चे वतन में आ जाओ, बाबा खुला निमंत्रण देता है वतन में आ जाओ, और जब वतन में चले जाते हैं तो उस गोतेखोर की तरह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। उस दुनिया की रंगत ही न्यारी निराली है, उस दुनिया में हम बाबा के साथ साथ जैसे कहां भ्रमण कर रहे हैं, कभी भक्तों के पास जा रहे हैं, कभी बाबा के साथ मिल करके बाबा से सकाश ले रहे हैं, कितनी विविधता है। और उस दुनिया में आप समय का कोई एहसास नहीं रहता है, कभी बाबा के संग बैठ के खाना खा रहे हैं, कभी बाबा के संग बैठ करके घूमने जा रहे हैं, कभी बाबा के साथ बगीचे में चक्कर लगा रहे हैं, कभी बाबा के साथ भक्तों के पास जा रहे हैं, कभी बाबा के साथ में किसी को सकाश दे रहे हैं, कितने सारे अनुभव में आप समा सकते हैं। उन गोतेखोरों की तरह एक अलग दुनिया में चले गए, और उस अलग दुनिया के अंदर इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा महसूस होता है कि वहां से वापस आने का कई बार पता ही नहीं चलता, इतना टाइम हो गया। जैसे कई बार किसी को देखते हैं तो महसूस होता है ये यहाँ नहीं है, कहीं और दुनिया में है, कहते हैं ना ये कोई और दुनिया में घूम रहा है, यहाँ नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो हमारी, कोई हमें हिलाए तब हमें महसूस हो कि अच्छा इतना समय हो गया, इतना समय हो गया और उस दुनिया में बार बार मन खींचता है, एक अलग दुनिया है, एक अलग अवस्था है, एक बहुत अच्छी सुकून देने वाली स्थिति है, उसमें जब समा जाते हैं तो एक रस स्थिति क्या होती है उसका अनुभव होता है। तो कभी तो अंतर्मुखता की गुफा में जाओ, कभी तो अंडरग्राउंड चले जाओ, कभी तो ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, और कभी तो क्या करो, गोताखोर बन जाओ, एक अलग दुनिया में जैसे विचरण करने लगो। तो एकाग्रता, एकांत और एक रस, उसमें जो रस की प्राप्ति होती है, आत्मा को जैसे सुख का, आनंद का, खुशी का रस मिलने लगता है। ठीक है, तो ऐसा अभ्यास अपना बढ़ाते जाओ तो बाबा जो हम बच्चों से चाहना रखते हैं उस अनुसार हम अपने स्वरूप को भी बना सकते हैं, अपने संस्कार को भी बहुत सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं, अपने स्वभाव को भी उसी अनुसार ले जा सकते हैं और बड़ी अच्छी अंदर में कमाई, भरपूरता का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव में जैसे समृद्ध हो जाएंगे, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई आप अपना अनुभव सुनाओ, इतना अंदर से खुद के पास अनुभव की समृद्धि है और दूसरों को भी वो अनुभव के खजाने से अंजलि देना सहज स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई स्थिति क्या होती है? तो अभी बैठे आज कहाँ जाना चाहेंगे सब मिलके? सूक्ष्म वतन में जाना है या निराकारी दुनिया में जाना है? कहाँ जाना है आज? संगठन में चलेंगे, है ना? कहाँ जाना है? कहाँ जाएंगे? हाँ, समुद्र के तले में, लेकिन कौन से समुद्र में जाना है? फरिश्ता स्वरूप वो दुनिया में जाना है या निराकारी दुनिया में जाना है? कहाँ जाना चाहते हैं आज सब? कौन से उसमें जाना चाहते हैं? निराकारी स्थिति में जाना चाहते हैं। चलो तो फिर निराकारी स्थिति में चलते। ओम शांति। अपने सर्व कर्मेंद्रिय को समेट कर सर्वप्रथम अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। वृकुटी की मध्य में स्वयं को देखो, इस चमकते हुए दिव्य सितारे को। आत्म स्थिति में स्थित आत्म अभिमानी होकर सर्वगुण स्वरूप बनते जा रहे हैं। मन को एक श्रेष्ठ लक्ष्य आज हमें निराकारी स्थिति में निराकारी दुनिया में चलना है। मैं आत्मा, देह और देह की कर्मेंद्रिय न्यारी होती जा रही है। और चलते हैं एक अलग दुनिया में, पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूक्ष्म वतन से भी पार, अपने निराकारी दुनिया में अंतर चक्षु से स्वयं को देखती हूं, अपने अनादि अविनाशी निराकारी स्वरूप में। एक न्यारी और प्यारी दुनिया है जहां चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों ओर दिव्यता का प्रवाह है। जहां मेरे प्यारे शिव बाबा है, अंतर चक्षु से अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप में बाबा को देख रही। मैं आत्मा स्वयं को बाबा के सानिध्य में देख रही, एकदम हल्कापन महसूस कर। अपने अनादि स्वरूप में, अनादि संस्कारों में स्थित मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, आत्म स्वरूप में स्थित बाबा के दिव्य प्रकाश के आभा मंडल स्वयं को महसूस करती मेरे शिव बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया में स्वयं को मैं स्वयं को सर्व शक्तियों के फाउंटेन के नीचे महसूस करते बाबा की सर्व शक्तियां स्वयं में समाती जा रही है। और मैं आत्मा सशक्त होती जा रही है। समा जाओ, हो जाओ, कितना सुंदर अनुभव है। मैं स्वयं को भी मास्टर सर्वशक्तिमान मैं आत्मा lighthouse, my house. ज्ञान की लाइट और सर्व शक्तियों की माइट ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस क्षण के लिए इस स्वरूप में स्थित हो जाते कितना सुंदर अनुभव है ये। मैं आत्मा समर्थ स्थिति में एक मणि की तरह चमक रही बाबा से पावरफुल प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। और स्वयं को भरपूर करती जा रही है। इस भरपूरता में अपने आत्मा संतुष्ट मणि होती जा रही है। और स्वयं में प्रसन्नता, दिव्य आनंद का अनुभव बाबा से सर्व संबंधों का, सुख का रस पान कर रही हूं। और अति इंद्रिय सुख का शांति के सागर में समाते हुए मैं आत्मा स्वीट साइलेंस स्थिति का अनुभव कर रही हूं। मन शांत और शीतलता का परमधाम में मेरे बाबा बीज स्वरूप है, मैं आत्मा भी बीज रूप। बीज रूप स्थिति में बीज रूप बाबा से प्रकाश अनुभव करोगे और एक ज्वाला स्वरूप स्थिति में वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूं। मैं आत्मा एकदम निर्मल स्वरूप हो रही हूं। बेदाग हीरा बन रही मुझ आत्मा की सारी एलॉय भस्म हो रही है। और मैं शुद्ध और पवित्र स्वरूप में स्वयं को अनुभव करती
तुमसे पाऊं, एक तुमसे ही प्यार करूं। Thank you.